ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ सातम स्कंध अध्याय 14 आदर्श पारिवारिक जीवन श्लोक संख्या 24। एते श्रेयसः कालः नीणां श्रेयः विवर्धनः कुर्यात् सर्वात्मना। एतेषु श्रेयः अमोघम् तत् आयुषः। ते श्रेयसः काला नृणां श्रेयो विवर्धनः कुर्यात् सर्वात्मनैतेषु श्रेयो अमोघं तदायुषः। त एते श्रेयसः काला नृणां श्रेयो विवर्धनः कुर्यात् सर्वात्मनैतेषु श्रेयो अमोघं तदायुषः। त एते श्रेयसः काला नृणां श्रेयो विवर्धनः कुर्यात् सर्वात्मनैतेषु श्रेयो अमोघं तदायुषः। शब्दात् ते इसलिए एते ये सब ज्योतिष संबंधी गणनाएं। श्रेयसः कल्याण के, कालः समय, नृणां मनुष्यों का, श्रेयः कल्याण, विवर्धनः बढ़ाते हैं, कुर्यात् करें, सर्वात्मनः अन्य कार्यों से, केवल श्राद्ध कर्म ही नहीं। एतेषु इन ऋतियों में श्रेयः कल्याण करने वाले अमोघम तथा सफलता तत् मनुष्य की आयु सह आयु का अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद ऋतुओं के सारे काल मानवता के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। ऐसे अवसरों पर सारे कल्याण व शुभ कार्य किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों से है मनुष्य अपने छोटे से जीवन काल में सफलता प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य, जब किसी को प्राकृतिक विकास के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त होता है तो उसे अगली प्रगति का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता के नवम अध्याय की 25 नंबर श्लोक में कहा गया है, जानकी देवव्रता देवन, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे उनके लोगों को जाते हैं, जानती मध्याजिनोपि माम, और जो कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवत धाम वापस जाता है। अतएव मनुष्य जीवन में उसे कल्याण कार्य करने होते हैं जिससे वह भगवत धाम लौट सके, किंतु भक्ति भौतिक परिस्थितियां पर आश्रित नहीं है, अहेतु की अप्रतिहता। जो लोग सकाम कर्म में लगे हैं उनके लिए उपयुक्त काल तथा वस्तुएं अत्यंत अनुकूल है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय में विशेष रूप में नारद मुनि ने आदर्श पारिवारिक जीवन के बारे में महाराज युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं। अवश्य महाराज युधिष्ठिर को ही माध्यम बनाकर हम सभी बद्धजीवों को ये उपदेश त्रयुज्य है। 12 युधिष्ठिर इस अध्याय के प्रारंभ में पहला श्लोक में ही नारद मुनि को प्रश्न पूछे है, गृहस्थ एतान पदवी विधिना येन चांजस याया देव ऋषि ब्रूहि मातृश गृह मूढ़धि। महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा, हे स्वामी, हे महर्षि, कृपा करके यह बतलाए कि जीवन का लक्ष्य, जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रही घर पर रहने वाले हम लोग वेदों के आदेश अनुसार सरलता से मुक्ति किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज गुरु गृह में ही नहीं थे, हैं? वो तो भगवान के महान भक्त थे, भगवान के जो महान सेवक व भक्ति करने वाले भक्त में से जिनको हरिदास वर्जीय कहते हैं उनमें से भी इनके नाम आता है, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर हरिदास वर्जीय। भागवत में तीनों के नाम ली गई, लेकिन और पद्म पुराण आदि अन्य पुराणों से 5 लोगों के नाम दी गई है। इसमें से कौन कौन है? युधिष्ठिर महाराज एक है और प्रहलाद हैं, युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज, गिरिराज जी महाराज तो सबसे श्रेष्ठ है, उद्धव है, उद्धव, गिरिराज जी और हनुमान, कोई कहते कि हनुमान जी व नारद मुनि, लेकिन ये सभी हरिदास वर्ज में से अवसर गिरिराज गोवर्धन को श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज भी हरिदास वर्ज में से एक माने जाते हैं। अर्थात भगवान हरि की जो सेवा की है वह भगवान हरि के भक्तों में से एक मुख्य भक्त के रूप में उनके नाम है। इनके नाम युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भक्त है, धर्मराज के रूप में भी जाने जाते हैं। लेकिन फिर इन्होंने इसे अपने को क्यों प्रस्तुत कर रहे कि गृह मूढ़धि, मैं गृह में फंसा हुआ इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ एक व्यक्ति ऐसा ही कह रहे, क्योंकि वह एक अपने को माध्यम बनाकर हम सभी बद्ध जीव को शिक्षा देना चाहते हैं। विशेष रूप में जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं उनको कैसे आचरण करना चाहिए गृहस्थ आश्रम में रहकर, अर्थात जीवन के लक्ष्य भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहकर कर्म करना चाहिए, तो उसकी उदाहरण व उसकी रहस्य को जानने के लिए उन्होंने एक माध्यम बनकर भगवान को प्रश्न पूछ रहे हैं। कौन? युधिष्ठिर महाराज। कि जैसे गृह में फंसे हुए जो व्यक्ति है, गृह पर रहने वाले हम लोग वेदों के आदेश अनुसार सरलता से किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कैसे भगवत धाम को प्राप्त किया जाए, उसके रहस्य को जानने के लिए महाराज युधिष्ठिर प्रश्न पूछा। और उसी प्रश्न को उत्तर देते हुए सारे अध्याय में नारद मुनि इतने सारे श्लोकों को जो नारद मुनि उच्चारण करके इस रहस्य को बताए। सबसे पहले तो उन्होंने कहते कि गृहेशु अवस्थित राजन क्रिया कुर्वन यथोचिता वासुदेवार्पण साक्षात उपासित महामुनि। कहते कि हे नारद मुनि, बा नारद मुनि कहते कि हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, गृहस्थ बनकर रहते हैं जो लोग, तो अपने जीविका अर्जन करने के लिए उनको तो कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करने का करके जो फल है उसको उसके प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए। वासुदेवार्पण साक्षात, सब कुछ किसको अर्पण कर देना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के चरणारविंद में कर्म फल को समर्पित कर देना चाहिए। वासुदेवार्पण साक्षात उपासित महामुनि, और भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भलीभांति धर्म के रहस्य को व भक्ति के रहस्य को जानना चाहिए। कर्म का फल को तो भगवान को अर्पण करना चाहिए, और भक्ति में कैसे आगे बढ़ना उस रहस्य को शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर उनसे जिज्ञासा करके सीखना चाहिए। सुमन भगवत अभिक्षणम अवतार कथामृतम, साधुओं के पास में जाकर विशेष रूप में भगवान हरि के बारे में श्रवण करना चाहिए, इनकी भिन्न भिन्न अवतारों की कथाओं को श्रवण करना चाहिए बड़े श्रद्धा के साथ। ये सब कथाओं को श्रवण करने से आस्ते आस्ते हमारा जो अनर्थ है ये सारे नष्ट होते जाएंगे, क्योंकि नवदा भक्ति के सबसे पहला अंग क्या है? श्रवण करना है। धर्म समुष्टिता पुंस विश्वक्षण कथा सुज न उत्पादय जरी रतिम समय वही केवलम। कोई व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम पर स्थित रहकर सही ढंग से अपने आश्रम के धर्म को निभाने पर भी यदि हरि कथा श्रवण में इसको रुचि उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर उसके सारे परिश्रम बेकार हो जाते हैं। समय वही केवल वृथा परिश्रम करता है। इसलिए यदि वह नारद मुनि प्रारंभ से शुद्ध भक्त की बात शुद्ध भक्ति की पर विशेष बल देते हैं, लेकिन साथ साथ वो जानते हैं कि तुरंत ही शुद्ध भक्ति की स्तर को आ पाना संसार में फंसे हुए इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए जीवों के प्रति जीवों के लिए संभव होना इतने आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने मार्ग बताते हैं, आस्ते आस्ते क्रम बताते हैं। यदि वो प्रभुपाद जी कोट करते कि भगवद्गीता में भगवान जैसे कहते कि जानति देवव्रता देवान पितृम जानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्या मध्यादिनो जानति अपि मां। नवम अध्याय की 25 नंबर श्लोक में भगवान कहते कि जो देवताओं की पूजन करते हैं वो देवलोक की देवताओं के पास में जाते हैं। जानति देवव्रता देवान, जो पितरों को पूजन करते हैं पितृलोक में, जहां पितृलोक रहते हैं उनके पितरों जहां रहते हैं वही पितृलोक में जाके निवास करते हैं। जो पितृपक्ष में श्राद्ध आदि देते हैं और जो पितरों की चिंतन करते हैं सदा, अंत समय यदि पितरों को चिंतन करके शरीर त्याग देता क्या होगा? वो भी पितृलोक में जाकर निवास करेंगे। और भूतानि जानति भूतेज्या, यदि भूत प्रेतों की पूजन करेगा, काला जादू करेगा, ब्लैक मैजिक सीखेगा, है तंत्र मंत्र जंत्र करेगा, बेतालों को साधन करना, भूत प्रेतों को साधन करके अपने कार्य हासिल करना चाहते कुछ लोग हैं, तो ऐसे भूत प्रेतों की यदि तमोगुण से आकर भूत प्रेतों की पूजन करेगा तो फिर क्या होगा? शरीर त्यागने के बाद भूत प्रेतों के साथ में जाकर रहेगा। भगवान कहते कि जो मेरी पूजन करता है, मेरी भक्ति करता है शरीर त्यागने के बाद, वो तो मेरे नित्य धाम वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा, जहां जाने से जगत्वान निवर्तन्ति तद्धाम परम मम। जहां पर जाने से पुनः इस संसार में जन्म मुक्ति संसार में आना नहीं पड़ता, उस परम धाम में रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी श्लोक में अपने तात्पर्य में आपको कहते कि यदि वो पूर्ववर्ती श्लोक में श्राद्ध आदि करने की बताया गया है, वैदिक कर्मकांड के आधार पर गृहस्थों को कहा गया कि श्राद्ध आदि करना भी जरूरी है, भिन्न भिन्न पुण्य तिथि में जिस दिन सूर्यदेव ने उत्तरायण गति प्रारंभ करते हैं मकर संक्रांति के दिन में, बाद जिस दिन दक्षिणायन गति प्रारंभ करते हैं कर्कट संक्रांति कहते हैं इसको, बाद जब चंद्र ग्रहण और सूर्य पराग के समय में और अन्य अन्य संक्रांति में अन्य पुण्य तिथि में आदि किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो वहां पर भी जाकर क्या करते लोग? पितरों को पिंडदान करते हैं। कहीं गया में जाकर पिंडदान करता है, कहीं भी जाओगे तीर्थस्थान में पंडे लोग आ जाते हैं, कहते हैं यहां पिंडदान करो, है ना। आप बद्रीनाथ में जाओगे, जगन्नाथपुरी में जाओगे, रामेश्वर में जाओ या द्वारका में जाओ, ये चारों धाम कहते हैं। इसके अलावा गया में विशेष रूप में लोग जाते पिंडदान करने, लेकिन ऐसे ही पिंडदान करके ही थोड़ा सा हमको आश्वस्त मिलता कि हमारे पितरों को कुछ ऊर्ध्वगति प्राप्त होता है पिंडदान करने से। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं तो उनको ऐसा करने का कुछ आवश्यकता नहीं है, अर्थात जो वैराग्य आश्रम में रहते हैं, जो संपूर्ण सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, जो सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में है, इनको ऐसे ही कर्मकांड के आधार में आकर ऐसे अलग अलग अन्य अन्य देवताओं की व पितरों की प्रसन्नता के लिए अन्य अन्य व्रत व पिंडदान आदि करने की आवश्यकता नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो गृहस्थ आश्रम है, जो संपूर्ण रूप में सब छोड़ के भगवान के शरण में आए नहीं अभी तक, तो फिर उनको करना जरूरी है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय वो अद्वैताचार्य, यदि वो महाविष्णु का अवतार थे लेकिन गृहस्थ आश्रम में जो निवास थे, इन्होंने भी अपने पितरों को पिंडदान करते थे, श्राद्धादि कर्म सांसारिक रीति से भी करते थे विधिवत। लेकिन सांसारिक लोग साधना में साधा करते हैं, कैसे साधा करते हैं, ब्राह्मण कहता कि इतने चावल ले आओ, आटा ले आओ, सब्जियां दाल ये सब, वो अपने मैंने लिस्ट बनाता और जो है प्रकृति में श्राद्ध में जो पितरों को जो अर्पण करना है भगवान के प्रसाद है, पितरों कैसे उद्धार होगा श्राद्ध में, श्राद्ध कीजिए ठीक है, लेकिन श्राद्ध में जो प्रसाद है पहले इसको भगवान विष्णु को अर्पण करके ही, कृष्ण को अर्पण करके ही, यदि महाप्रसाद को ही फिर पितरों को अर्पण किया जाए तो उनकी सदगति होता है। लेकिन कर्मकांड के आधार पर हम किसी पुण्य तिथि में आप पुण्य स्थान में जाकर तीर्थ स्थान में ऐसा करते नहीं, कच्चा चावल लिया तो कच्चा चावल भगवान खाते ना वो है, क्योंकि पंडित को ही चाहिए ना कच्चा चावल और सब्जियां घी ये सब होगा तो अपना बांध की बस लेके जाएगा है। लेकिन विधि जब वैष्णव होते जब अद्वैत आचार्य जब श्राद्ध करते थे तो वो भगवान को प्रसाद है कुकिंग करके भगवान को प्रसाद चढ़ाकर फिर उसी प्रसाद को पितरों को अर्पण करते, पितर जब महाप्रसाद खाएंगे फिर उनको उद्धार होगा, कलम से रहित हो जाएंगे। यज्ञ उचिष्ट संतम उच्यते सर्व किल विषय, जो यज्ञपति भगवान विष्णु की उच्चिष्ट खाएगा महाप्रसाद का है वो खाएगा तो वो कलमश से रहित हो जाएगा। इसलिए पितरों को पिंडदान देना है लेकिन क्या अर्पण करना है इनको, महाप्रसाद, इनको कच्चा चावल ऐसे क्या कई सब्जियां कच्चा चावल दाल ये सब, कोई आप खाते हो कच्चा ऐसे चावल खाओगे ऐसे। श्यामानंद प्रभु के एक शिष्य था, श्यामानंद प्रभु वो क्या करता था अपने घर में शालग्राम रखता था और पितृ श्राद्ध पक्ष में आगे क्या करता था, पंडित को बुलाकर एक कच्चा चावल, पंडित कहता था कि यही सब लाओ, कच्चा चावल दाल आटा सब्जियां सब लाओ है घी सब लाओ है, वो सुहा करके बस सब अपने बांध के लेके चले जाता है। तो श्यामानंद प्रभु बोले ऐसा नहीं, तुम जो पितरों को देना पहले भगवान को प्रसाद लगा कुकिंग करके भोग लगा इनको भगवान को अर्पण करके महाप्रसाद पितरों को अर्पण करना, पंडित जो कहता उसकी बात नहीं सुन लेगा। लेकिन फिर भी वो ऐसे करता था, लेकिन वो जो श्यामानंद प्रभु जो गांव के लोग के रीति के अनुजय तो फिर वो लेकिन सर योग उनके जो शिष्य था वो क्या करता था कि चावल आटा सब्जियां ऐसे लाकर ऐसे कच्चे से भगवान को मैंने ब्राह्मण जैसे कहता तैसे करके फिर उसी ब्राह्मण को दे देता था है? भगवान पास में से कच्चा चावल भोग लगाता था है? कच्चे चावल भगवान के पास रखकर तुलसी डाल के सुहा करके बस ब्राह्मण लेके भाग जाते, उसे मना किया। लेकिन ऐसे करने के कारण श्यामानंद प्रभु कहा कि देखिए कि शिष्य ऐसे कर रहा है कि तुझे बड़े गुस्से हुए, बोले कि तुमने ऐसे ही मेरे बात न सुनी, ऐसे कच्चा चावल दाल सब्जी ऐसे कच्चे चीज भगवान को ऐसे अर्पण करता है, इसलिए हस्ती का जोनी में जा पशु की जोनी में जा कच्चा खाएगा है, भगवान ऐसे नहीं खाते कच्चा, भगवान क्या खाते, भगवान कुकिंग करके इसको प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पण किया जाता है। तो इसलिए कर्मकांड की विधि के साथ भक्ति को भी जोड़ना चाहिए, कोई भी विधि जो कि भक्ति के साथ जोड़ता नहीं है वो हमको सही फल देने वाला नहीं है। गृहस्थ आश्रम में देखिए पिछले श्लोक में ये सब कहा गया पिंडदान के बारे में, तीन चार श्लोक एक साथ में, पिंडदान रामचंद्र जी ने भी, भगवान रामचंद्र जी ने भी पिंडदान दिए हैं जो गृहस्थ आश्रम में थे वनवास में थे, तथा फिर भी जब श्राद्ध का तिथि आया किनकी श्राद्ध पक्ष आया तो महाराज दशरथ को पिंडदान देने के लिए उन्होंने सब सरंजाम लाने के लिए गए, कौन भगवान राम लक्ष्मण गए, सीता जी अकेली थी गया में गया तीर्थ में, तो श्राद्ध जो ठीक समय में जो पितरों को अर्पण करना वो समय बीत जा रहा था, ये लोग पहुंच नहीं पाए, इसलिए दशरथ जी ने स्वयं प्रकट होकर आपने हाथ मांगे दो मुझे पिंडदान है, समय बीत गया बीत जाने से मैं और ले नहीं सकता, तो सीता की जी के पास कुछ था नहीं क्या करेंगे, वो क्या दे दी वही बालू और पानी बस है वही, अब इसको फल्गु नदी, वो जब नदी जो गया में बहती है, गया है जो भगवान के चरण चिन्ह है गया में, गयासुर को भगवान ने वहां पर बद्ध किए थे, गयासुर जैसे प्रताप राक्षस था जो कि तीनों लोग को सताता था, इसलिए भगवान विष्णु ने वहां पर अवतार मैंने प्रकट होकर उस राक्षस को वध किए थे। गयासुर के साथ उनकी लड़ाई हुआ था, इसलिए वो पत्थर के ऊपर जो शिला के ऊपर भगवान के चरण चिन्ह था, उस चरण चिन्ह पत्थर पर खड़ा होकर जो फाइट युद्ध किए थे उसके साथ, इसलिए भगवान के चरण चिन्ह वहां पर है, उसे चरण चिन्ह को ही पूजा की जाती है। गया में दूसरे कोई विग्रह की मंदिर को ऐसे अलग से रख, लेकिन जो मुख्य जो मंदिर है वो विष्णुपाद मंदिर है, भगवान विष्णु की चरण चिन्ह की वहां पर पूजन होती है, उसके बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं, वो चरण का ही पूजन होता, आरती होता, सब कुछ है। तो इसलिए पिंडदान की प्रथा जो जैसे सीता जी ने दे दिए बालू और पानी पिंड के रूप में, दशरथ उसी को लेकर गए चले गए हैं, रामचंद्र लक्ष्मण वापस आए, गए कि भाई सीता जी ने कही कि आपके पिताजी आए, हाथ हाथ मांगे, मुझे हाथ देख बढ़ाकर मांगे, समय बीत रहा है, साधन देने का समय बीत जा रहा, दो, मेरे पास कुछ था नहीं, क्या दिया तुम, बालू और पानी, तुम ऐसे कैसे साधन दिया, क्या प्रमाण है, ऐसे क्यों दिया, हम थोड़ा प्रतीक्षा करना था, आप प्रतीक्षा न तो समय बीत जाता था, इसलिए मुहूर्त के बारे में पार्टिकुलर जो समय उसी समय में पिंड आदि दान दिया जाता है। हाँ, लेकिन विश्व थोड़ा सा सीता जी को पूछे कि भगवान ने जदि सो जानते, फिर कहे कि साक्षी कौन है, तुम्हें से पिंडदान दिया था, मेरे पिताजी आकर पिंडदान प्राप्त किए, तो कहे कि ये सो साक्षी है, कौन, ये नदी साक्षी है जिसके बालू और पानी में दिया इनको, हाँ? कई लोग को साक्षी रखे, गाय भी साक्षी है, तुलसी महारानी भी साक्षी है, ये वृक्ष भी साक्षी, ऐसे सबको साक्षी रखे। लेकिन जो रामचंद्र जी ने पूछे, देखिए कितने सारे संजम लेकर आए, भगवान बोले भगवान और दोबारा साधक करेंगे तब ठीक है, अच्छा है, कोई साक्षी नहीं दिया। नदी ने कहा कि मुझे पता ही नहीं क्या है, गाय ने क्या देखा कि इतने सारे खाना सब सामान आ गया, जब पिंडदान हुआ तो मैं फिर मजबूत, मुझे बहुत केले वगैरह सो खाना मिलेगा, किसको, गाय को, गाय भी बोला कि पता ही नहीं है, हुआ कि नहीं पिंडदान, दोबारा हो जाए तो अच्छा है। और सब जितने भी थे जिनको साखी, तुलसी महारानी भी साखी नहीं दी, लेकिन नहीं पता नहीं, देखिए सब लोग ऐसे बोल रहे, तो सीता जी ने बड़े क्रोधित हुए हैं, अभिशाप दिए, इसलिए कहकर नदी तो सूख जा, कभी भी तेरे से मैंने जल जल जो जल है, यदि तू झूठ कहने के क्या, यदि तू सत्य कहा था तो तुम ऐसे पानी तो वहां पर पानी तुम्हारे धारा के पानी के स्रोत बहेगा, नहीं तो तुम सूख जाओगे, इतना कहते ही सूख गई क्या नदी, उसका आज भी कहते बालू ऐसे सूखा पड़ता है, थोड़ा सा खुदाई करोगे तो फिर पानी निकल गया। उसका कहते फल्गु नदी, कहते ना फल्गु वैराग्य, उस नदी के नाम है फल्गु नदी, फल्गु वैराग्य से कहते ऊपर से वैराग्य वेश है, लेकिन अंदर अंदर में सब कुछ भोगने की इच्छा होता है, वो नदी ऐसा ही ना फल्गु नदी, पूरा ऊपर से सूखा देखता है, लेकिन थोड़ा सा सही थोड़ा सा बालू साइड करते हो पानी निकल आएगा। कहते फल्गु वैराग्य, फल्गु नदी के नाम से फल्गु वैराग्य शब्द आता है, और फल्गु नदी जो है सीता जी का भी सब सूखा हुआ है, ये थोड़े से बालू ऐसे करके पानी निकलेगा अंदर में पानी है। उन्होंने भी अभिशाप दे दी गाय को, बोले कि तेरा सब कुछ पवित्र माना जाएगा, लेकिन तेरा मुख अपवित्र माना जाएगा, कि तू मुख में झूठ बोला, माता पृथ्वी सब सहन कर लेती है, किसको नहीं सहन करती, झूठ कहने वाला की व्यक्ति की बोझा है, कहते कि इसलिए गाय के सब सभी पवित्र माना जाते, लेकिन उसका मुख पवित्र नहीं है, मुख कहीं लगाते तो आपको हाथ धोना पड़ेगा, मुख अपवित्र माना जाता, गाय का पिछले भाग सब और सब पवित्र है पूरी गाय की, मुख पवित्र नहीं माना जाता है। हाँ, सीता जी को अभिशाप दे दिए इसको, तुलसी महाराणी कहेगी चाहे तो कृष्ण की कितनी प्रेयसी बन जा, लेकिन कुत्ते तेरे ऊपर पेशाब करेंगे, क्या करेंगे, अभिशाप ऐसे दे दिए कौन, सीता जी, तो तुलसी पौधे के लिए लगाओ तो कुत्ते जी पेशाब करेगा होते, और ऐसा ही दुख को भी ऐसे सबको अभी दिए, इनमें यहां पर वो सब कहने का तत्व, लेकिन कहने का अर्थ है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान ने स्वयं आदर्श निभाया, क्या क्या करने के लिए, पिंडदान देने का विधि है, पिंडदान देने बाद अद्वैत आचार्य ने जैसे गौरांग महाप्रभु समय, वो भी जो गृहस्थ आश्रम में रहते थे गौरव पार्षद लोग भी पिंडदान आदि करते थे, लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने इसीलिए पिंडदान नहीं दे पाए, तो सरंजाम लेकर आए थे लेकिन नहीं दिए। ये भगवान जब इसे चावल और कच्चा चावल डाल ऐसे लेकर पिंडदान देते फिर सब लोग, इसको भगवान ने दिए ही नहीं, सब लेके आए थे चावल फावल लेके आए थे, फिर कहाँ कुकिंग करेंगे और पिंडदान करेंगे। लेकिन गौरोपार सब लोग जो उसको पिंडदान करते थे वो कोई ऐसे कच्चा चावल डाल ऐसे ऐसे पिंडदान नहीं करते थे। क्या करते थे वो, इसको कुकिंग करके भगवान को भोग लगाते थे, फिर प्रसाद को पितरों को अर्पण करते थे, भगवान विष्णु के प्रसाद को अर्पण करते थे। अद्वैत आचार्य तो पितरों को अर्पण करने के बाद फिर श्राद्ध पात्र सबसे पहले किसको देते थे, हरिदास ठाकुर। विधि है कि श्राद्ध पात्र को किसी ब्राह्मण को योग्य ब्राह्मण को खिलाने से पितरों की उद्धार होता है, लेकिन हरिदास ठाकुर तो मुसलमान घर में जन्म लिए थे, जवन कुल में जन्म लिए थे, लेकिन इनको लेकर अद्वैत आचार्य श्राद्ध पात्र खिलाते थे। लेकिन वो कहते थे कि मैं योग्य नहीं हूं, मुझे क्यों दे रहे हैं, मैं जवन कुल में जन्म हुआ हूं, आपके पितरों की के लिए जो श्राद्ध पात्र है वो प्रसाद खाने की मैं अधिकारी नहीं हूं, और किसी योग्य ब्राह्मण को अर्पण कीजिए। लेकिन अद्वैत आचार्य कहते कि आप यदि श्राद्धक मेरे ने ये श्राद्ध पात्र को स्वीकार करोगे, पहला भोजन यदि आप ही करोगे मेरे पितरों की कल्याण के लिए, तो ऐसा ही लाखों ब्राह्मण को खिलाने के करोड़ों ब्राह्मण को खिलाने के फल मुझे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो सदा हरि नाम के आश्रय में रहते थे, वो महान वैष्णव थे। कौन, हरिदास ठाकुर। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए पितरों के कल्याण के लिए भगवान तथा भगवान के शुद्ध भक्तों की सहायता भी नहीं, इनकी उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए पिंडदान करना, लेकिन कर्मकांड की जो विधि है इसको आश्रय करना इतनी आप मैंने वैष्णव के लिए इतनी आवश्यकता नहीं है। जो वैरागी है तो उनके लिए कोई जरूरत नहीं। भक्ति जहां सरस्वती ठाकुर कहते कि जो संन्यास आश्रम में वैष्णिक ब्रह्मचारी है, कभी भी घर के साथ कोई संपर्क नहीं रखा है, घर में आना जाना कुछ भी नहीं, कोई संपर्क नहीं है, फिर उनके लिए सब विधि पे कर्मकांड की विधि पालन करने की आवश्यकता नहीं रहता। लेकिन जो घर के सब घर में रह रहे हैं, परिवार में है, माता पिता सब परिवार वर्ग सब लोग पूरे संबंध बनाकर रखे हैं गृहस्थ जीवन में, फिर भी उनके लौकिक दृष्टि से सब सदा ये सब आचरण करना ठीक है, आचरण पूरा त्यागना नहीं चाहिए, नहीं तो लोग सारे हंसेंगे, निंदा करेंगे, आप क्रिटिसाइज करेंगे, कौन जनरल जो आपके पड़ोसी होंगे जो पब्लिक है। इसलिए यज्ञ दान तप क्रिया भगवान कहते हैं कि त्यागना नहीं चाहिए। अठारह अध्याय भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान तप क्रिया इसको त्यागना नहीं चाहिए, लौकिक दृष्टि से संपादन करना चाहिए जैसे अद्वैत आचार्य ने संपादन करते थे। लेकिन फिर असली रहस्य हमको जानना चाहिए कि ये जो साध्य है, साध्य में हम यदि साध्य पितरों के उद्देश्य में की जा रही, लेकिन हम मुख्य रूप में भगवान को सब कुछ अर्पण करके ही फिर इसके प्रसाद रूप में पितरों को अर्पण करेंगे, यानी कि पितरों को अर्पण पहले कर देंगे ऐसे ही करके बाद में भगवान को देंगे, नहीं पहले भगवान को अर्पण करके उसके प्रसाद के रूप में किनको देना, पितरों को अर्पण करना, इसी से उनकी कल्याण होने वाला है। इसलिए आज के श्लोक हमें कहता है कि ते श्रेयस काला निणान श्रेय विवर्धन श्रेयस। यहां पर दो श्लोक में दो बार श्रेय शब्द आता है, श्रेयस काला फिर कुर्जा सर्वात्मा नहीं तेसु श्रेयो अमोघन तथा आयुष। श्रेय और प्रेय दो चीज है, यहां श्रेय शब्द से हमारा दो चीज, प्रेय का अर्थ हमारा इंद्रिय तृप्ति की जो साधन प्राप्त करना कहते इसको प्रेय, हमको प्रिय होता है संसार में, संसारी लोग को ये प्रिय होता है, क्या क्या प्रिय होता है संसारी लोग को, इंद्रिय तृप्ति की जो साधन है धन जन कविता सुंदरी ये सब अच्छा लगता है किनको, संसार में रहने वाले जो बद्धावस्था में जो है, तो उसे प्रेय कहते। ये कर्मकांड यज्ञ के आदि माध्यम से हमको क्या प्राप्त होता है, प्रेय प्राप्त होता है। वैदिक कर्मकांड के माध्यम से हम लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो धन मिलेगा, गणेश को पूजा करेंगे तो बाधा विघ्न से मुक्त हो जाएंगे, सूर्य को पानी चढ़ाएंगे तो रोग व्याधि से मुक्त हो जाएंगे, उमा शंकर को पूजा करने से हमको योग्य पति या पत्नी मिल जाएंगे, विश्वकर्मा को पूजा करेंगे तो बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकते हैं, सब बताया गया कर्मकांड में, भिन्न भिन्न देवताओं को पूजा करने से उनकी कृपा से कुछ हमको योग्यता मिल जाएगा और हम समाज में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, बहुत धन मिलेगा, धन कमा सकेंगे और इंद्रिय तृप्ति बहुत से बहुत कर पाएंगे है? ये प्रेय इसको कहते प्रेय, वैदिक कर्मकांड के माध्यम से हमको क्या प्राप्त होता है, प्रेय। लेकिन ये प्रेयों के माध्यम से भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। ये शरीर, शरीर की आवश्यकता को हमें प्राप्त करते हैं, लेकिन श्रेय का अर्थ जिसके माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, श्रेय का अर्थ जो कि इंद्रिय तृप्ति की परे, जो भगवान की प्रसन्नता करने के लिए जो कर्म है उसको श्रेय कहते हैं। हाँ। हमारे लिए श्रेय क्या है, रूपा जी कहते भक्ति ही श्रेय, सब कुछ अर्पण करना, किसको, वासुदेवार्पण, जैसे कहे नारद मुनि प्रारंभ से वासुदेवार्पणं साक्षात उपासित महामुनि। गृहस्थों को गृहस्थ का श्रेय के ना सब कुछ अर्पण करना, कर्म करना जरूरी है लेकिन कर्म करके सब कुछ अर्पण कर देना, किसको, वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ अर्पण कर देने से फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद हमें प्राप्त होगा, यही हमारा श्रेय, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, जिससे हमारा आत्मतृप्ति होगा, आत्मा के कल्याण होगा। दो धर्म है, नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म। नित्य धर्म का अर्थ आत्मा की धर्म, आत्मा की सदगति कैसे होगा, इसको नित्य धर्म भाई ऐसी को श्रेय कहते हैं। और नैमित्तिक धर्म अर्थात शरीर को कैसे अच्छा से रखना है, शरीर को सुस्थ सबल अच्छा से रखना, इंद्रिय तृप्ति के साधन को प्राप्त करना है, शरीर की प्रसन्नता के लिए जो सो आवश्यकता है, इसको कहते नैमित्तिक धर्म। नैमित्तिक शरीर के मैंने लौकिक धर्म, लोगों के मैंने समाज में रहकर लौकिक धर्म के माध्यम से जो हमारे शरीर पोषण करना है, इसको कहते नैमित्तिक धर्म। तो नित्य धर्म का हम लोग ज्यादा नैमित्तिक धर्म के प्रति ध्यान देते हैं है? और नित्य धर्म के प्रति थोड़ा नेग्लेक्ट कर देते हैं, प्रेय के प्रति ज्यादा ध्यान देते हैं, श्रेय के प्रति थोड़ा कम, भगवान की भक्ति करने के लिए टाइम बहुत कम होता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत समय होता है, पैसा कमाने में कितना टाइम जाता है, हमारा जो 24 घंटा से कितने घंटा धन कमाने में बीत जाता है, आठ से 10 घंटा 12 घंटा है, केवल इसे पैसा कैसे आएगा, उसी के प्रचेष्टा में लगे जाते हैं, तो प्रेय में बीत रहा अपन धन कैसे आएगा, धन मनी स्वीटर देन हनी ब्राइटर देन सनशाइन है, धन के बिना कुछ नहीं होता है। अब विशेष रूप में जो गृहस्थ जीवन में रहते थे इनको धन की आवश्यकता होती है, धन के बिना किसे क्या करे, परिवार कैसे चलाएगा, लेकिन ठीक है धन कमाए, लेकिन वही धन कमाने ही लगते जाए, अपना बैंक बड़ा बैलेंस बढ़ाते जाए तो उसी के लिए केवल पूरा समय बिताना नहीं चाहिए, उस श्रेय के बारे में भी चिंतन करना चाहिए कि मनुष्य के प्रकृति जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्ति करेंगे भक्ति के लिए भी थोड़ा समय देना चाहिए है। अब इसलिए कम से कम 24 घंटा में कितने घंटा भक्ति के लिए रखना चाहिए, श्रेय के लिए, जो कि हमारा आत्म के कल्याण होगा, आत्मा की सदगति होगा, भगवत धाम को जाएंगे, जन्म मुक्त चक्र से मुक्त हो जाएंगे, उसके लिए कितना टाइम चाहिए है? कितना, एक घंटा, चार घंटा, बस चार घंटा भगवान की सेवा के लिए और 20 घंटा है प्रेय के लिए। भक्ति का अर्थ क्या कहते हैं, लोगों को समझ कहते कि 24 आवर्स इन कृष्ण सर्विस, 24 घंटे कृष्ण का सेवा में, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण नेवर फॉरगेट सिंह, स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधेशु एतेयर एव किंकर, सारे विधि निषेध का जो मुख्य जो प्रिंसिपल है, सदा भगवान विष्णु व श्री कृष्ण के स्मरण रखना, इनको कभी भी नहीं भूलना। गृहस्थ आश्रम में रहने पर भी भगवान ने अर्जुन को कहते कि मामेनु स्मरण युद्धे च, मेरा स्मरण करो और साथ साथ शत्रुओं के पर बाण भी चलाओ है? सामने कर्ण खड़ा, कर्ण के ऊपर बाण चलाना, लेकिन क्या कहना, जय श्री कृष्ण, कृष्ण को है हरे कृष्ण कहकर फिर भगवान कहते मामेनु स्मरण युद्धे च, मेरा स्मरण करो साथ साथ युद्ध करो। हैं? तो गृहस्थ आश्रम जब हम जो धन कमाने में लग जाते तो फिर भूल जाते ना, उस समय क्या भूल जाते, भगवान स्मरण करना भूल जाते ना, है? पैसा ऐसा थोड़ी आता है, पूरे सतमार्ग में पैसा लाना इतने आसान नहीं, ये भगवान का ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ आश्रम में हमें ज्यादा जितनी आवश्यकता धन इतनी आवश्यक इसी इतने ही धन को प्राप्त करके फिर अन्य सारे समय को किसमें लगाना चाहिए, भगवान के भजन में लगाना चाहिए, है? हमारा एस्टिमेट इतना ही है, बस इतना मिले तो थोड़ा बस जितने आवश्यक, हम केवल मनी को बैंक में बैलेंस अभी इस महीना में हमारा प्रॉफिट हुआ था बिजनेस से तो कितना 50,000 प्रॉफिट हुआ था, अगला महीने में कितना होना चाहिए 1,00,000 होना चाहिए, फिर 1.5 लाख होना चाहिए, फिर ऐसे ही करके एस्टिमेट को बढ़ाते जाना और अधिक समान परिश्रम करना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारा जितने आवश्यक हो रहा है बस इतने में संतोष रहना और समय को अधिक से अधिक बचा करके क्या करना चाहिए, भक्ति में लगाना चाहिए, इसलिए बैलेंस रखना चाहिए कि श्रेय और प्रेय हो। इंद्रिय तृप्ति ठीक है, इंद्रिय तृप्ति करके शरीर को भी पोषण नहीं करेंगे तो भक्ति कैसे करेंगे, भक्ति शरीर के माध्यम से ही होगा। इसलिए जिसको मनुष्य शरीर मिला है, जैसे प्रभुपाद जैसे लगते हैं कि जब किसी को प्राकृतिक विकास के द्वारा मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो उसे अगली प्रकृति का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेना चाहिए, है? तो इसलिए जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो भगवान की भक्ति इसे मनुष्य शरीर में ही होता है, इसलिए शरीर को भी पोषण करना हमारा आवश्यकता है। ये मनुष्य शरीर में ही भक्ति कर सकते हैं, जितने जैसे अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, कुत्ता बिल्ली है पशु पक्षी के शरीर में ऐसा भक्ति करना आसान नहीं। अवश्य उदाहरण है कि पशु पक्षी लोग भक्ति भी किया है, जटायु ने भक्ति किया है, काकभूषणी ने भक्ति किया है, हनुमान जी ने भक्ति कर रहे हैं, जाम्बवान जी ने भक्ति किया है, अन्य अन्य पशु पक्षी शरीर में यदि वो भक्ति करना संभव है, लेकिन इतने ये कोई रेयर एग्जाम्पल है, लेकिन मनुष्य शरीर में रहकर भक्ति करना बड़ा आसान है, क्योंकि हमें भगवान ने विशेष में स्मरण शक्ति, अच्छा बुरा विचार करने की शक्ति, ये सब हमारे पास है। इसलिए क्रम विकास में आकर जब प्रभुपाद जी कहते हैं जब हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो उसे अगली प्रगति अर्थात आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए मनुष्य का ही कर्तव्य है, लेकिन जब भगवान की भक्ति करने के लिए शरीर को भी पोषण करना हमारा धर्म है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टाश्च कर्मस्य चाहिए, तो इसलिए युक्ताहार विहार भी आवश्यकता है, ये शरीर का आवश्यकता कुछ भी है, इसको ठीक से रखो तो सुस्थ सबल रखने तो फिर इसके माध्यम से भक्ति करोगे ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, हैं? शरीर थोड़ा जिसके पास हेल्दी शरीर है तो अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है ना, बैग लेके जाएगा दौड़ सकता है इधर उधर, और रुगना शरीर खस्ता रहेगा, अगर खाना पर मैंने कुछ खाता डाइजेशन नहीं होगा तो कैसे बीमार आदमी कैसे दौड़ेगा, है? शरीर को भी रक्षण करना जरूरी है, लेकिन दोनों में इसलिए बैलेंस रखना, लेकिन क्या खाना चाहिए, कृष्ण प्रसाद, भगवान के प्रसाद खाकर थोड़ा शरीर को भी स्वस्थ रखें, और इसके साथ में लेकिन शरीर को हमें जानना चाहिए कि कृष्ण की सेवा के लिए है, गृहस्थ आश्रम में भी यदि है लेकिन वासुदेवार्पण सख्या नारद जी कहते यदि वो गृहस्थ आश्रम में हो तो फिर एक घर तो आपने मत सोचो, घर किसका है, कृष्ण का है, हैं? कृष्ण को ही केंद्र में रखो, इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को डेटीवरशिप जरूरी है, जो गृहस्थ आश्रम में है यदि मंदिर पास में है तो ठीक है, नहीं तो घर में इसको क्या करना चाहिए, विग्रहों को रखना चाहिए, नहीं कि मंगला आरती में आना सुबह 4 बजे जगना मंदिर में रहने वाले भक्तों के लिए केवल है, हम सोचते हैं ना कि मंदिर में रहते भक्त उनको 3:30 बजे 4 बजे उठ के मंगला आरती में आना है तो उनका काम है, हम गृहस्थ में रहते तो हमको 8 बजे जगने से चलेगा, चलेगा नहीं, गृहस्थ को भी सुबह उठना 4 बजे स्नान करना और घर में मंगला आरती करना, घर में भी विग्रहों को रखना है, घर को भी मंदिर बनाना है, घर ही मंदिर है, वो भी हरि के मंदिर है, उसको अपना घर मत सोचो, वो किसका घर है, भगवान का घर है, गृहस्थ को भी घर वासुदेव अर्पण सख्यत, इसलिए नारायण कहते कि जहां पर रह रहे हो गृहस्थ को जिस घर में रहता उसको भी वासुदेव को अर्पण करना, पांडवों की घर अर्पित था किसके लिए, कृष्ण को सब कुछ अर्पण कर रखे थे। इसलिए जब सुने कि युधिष्ठिर महाराज भगवान अंतर ध्यान हो चुके, लीला को समरण कर चुके, एक क्षण में चारों ने पांचों को पांचों भाई निकाल गए घर छोड़ के, सारे हस्तिनापुर के सिंहासन पूरे विश्व के सम्राट के सब त्याग कर चले गए हैं एक क्षण में, परीक्षित को बढ़ाए थे सिंहासन में निकल गए, कोई मतलब नहीं संसार में है? तो इसलिए हम जो संसार में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो घर को भी मंदिर समझना चाहिए। घर हमारा नहीं है, ये किसका घर है? भगवान का घर है, है? और मैं एक निमित्त बनकर घर में रहता हूं। भक्ति विनोद ठाकुर हमारा आदर्श सिखाए, भक्ति हमारा महान आचार्य परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर भी गृहस्थ आश्रम में रहकर ये आदर्श सिखाए, कैसे गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सब कुछ वासुदेव को अर्पण करना है। मानस देह गेह जो कीछु मोर और पीलो तो आप दे नंद किशोर। मेरा मन में मानस देह शरीर, मेरा घर, जो कुछ भी मेरे अधीन में है, ये सब कुछ है नंद किशोर आपके चरण में मैं अर्पण कर दिया। मानस देह गेह शरीर और परिवार, जो कुछ भी शरीर के संबंधी जो भी मेरे अधीन में इस संसार में दिखाई पड़ते, संसारिक लोग सोचते कि सब उनका है, ये सब मेरा नहीं है प्रभु, ये सब मैं आपको अर्पण कर दिया। ये घर भी आपका है, ये बच्चे भी आपके हैं, ये भी आप कृष्ण के सेवक आपका ही है, मेरे पत्नी भी आपकी दासी है, मैं भी आपका दास हूं, ये घर भी आपका है, घर के मालिक आप हो। ऐसे गृहस्थ जीवन में रहकर सब कुछ अर्पण करना, वासुदेव अर्पण, वासुदेव कृष्ण को सब कुछ अर्पण करके ही निमित्त बनकर उसी घर में रहना। ऐसे ही जो गृहस्थ जो प्रकृति में अपने श्रेय को प्राप्त करने में गृहस्थ आश्रम भी सहायक, इस आश्रम है जो कहते हैं आश्रम, वन ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये आश्रम है। आप घर में नहीं रह रहे हो, कहां रह रहे हो? आश्रम, वो घर भी आश्रम है, ये एक माध्यम है। आप किसको प्राप्त करने के लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। किसी भी आश्रम में रहकर व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, कोई ब्रह्मचारी भी भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, गृहस्थ भी गृहस्थ आश्रम में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, आश्रम चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ब्रह्मचारी गृहस्थ बनने से बड़ा बन जाता है, गृहस्थ वानप्रस्थी या सन्यासी बन जाने से बड़ा बन जाता है, ऐसा नहीं। प्रत्येक आश्रम अपनी स्थिति पर वो महान है, है? एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति वो सभी को पालन करता है, ब्रह्मचारी को भी, वानप्रस्थी को भी और सन्यासी को भी, ये तीनों को कौन खिलाएगा? ये तो धन कमाएंगे नहीं, ये सिर्फ अपने प्रचार में लगे रहेंगे, तो इनको पोषण करने वाला कौन है? ब्रह्मचारी कहां भीख मांगने जाएगा? गुरु को लाने के लिए, जाके देने के लिए, सन्यासी गुरु है, और ब्रह्मचारी भीख मांगने कहां जाएगा? गृहस्थ के दर्जे पर जाएगा। इसलिए इस पूरा समाज को अगले पिछले श्लोक में कहा गया, पशु पक्षियों को भी खिलाना, ये किसका काम है? गृहस्थ का है। ये पशु पक्षी भी मरे, इनको भी, पशुओं को भी खिलाना, पक्षियों को खिलाना, चिट्ठियों को खिलाना, सब दाना देते हैं लोग, डालते हैं पक्षियों में, ये सारे गृहस्थ के काम है। गृहस्थ का आश्रम में इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, सभी को पोषण करना है। ब्रह्मचारी जो अपना शुभमाला जपा करके बस किताब देवान गुरु आदेश में चाहे कुछ सेवा किया मंदिर में, टाइम पर प्रसाद मिल गया, कितने बजे? फिक्स टाइम है, घंटी बज गया प्रसाद को पता है, बस गया अपना प्लेट बैठा खाया चल गया, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता है? महीने के ठीक जितना आवश्यकता सर्फ साबुन और पहले से सप्लाई मिल जाता है, जो आवश्यकता सब कपड़ा भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, उसको कोई चिंता नहीं, बस वो आराम से हरे कृष्ण जपेगा और सेवा करेगा रहेगा। तो गृहस्थ व्यक्ति कितना चिंतन है, धन कहां से आएगा, और परिवार में कैसे मार्केटिंग करना, सब कुकिंग करना, फिर कितने सारे समस्या है? और ये सारे धन भी जो आया तो फिर कहते कि ये धन सारे उसका भी अधा क्या दे देना चाहिए, किसको दे देना चाहिए? वासुदेव की सेवा में, मंदिर में भी दे देना कुछ है? पैसा भी मंदिर में देना, फिर इतने पैसा बेचारा परिश्रम करी कमाएगा, फिर ब्रह्मचारी बेचारा ब्रह्मचारी सुबह माला जपा करेगा, आराम से रहेगा, बस किताब पढ़ेगा, प्रभुपद का वितरण करेगा, सेवा करके रहेगा, गृहस्थ यदि संतान चाहता है तो कितना माला जपेगा? 50 माला प्रभुपाद जपेगा। किसी गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति यदि संतान चाहता है, संभोग केवल संतान उत्पन्न करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, केवल कृष्ण भावना भावित संतान को प्राप्त करने के लिए, तो उसको केवल संभोग में रत रहना चाहिए, स्त्री और पुरुष को गृहस्थ आश्रम में। लेकिन जो संभोग में रत रहेंगे और बच्चे की इच्छा रखेंगे तो फिर इनको कितनी माला जपना डेली? 50 माला जपनी है। लेकिन फिर भी असंभव नहीं है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जैसे महान आचार्य, उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहकर भी परमहंस के जीवन निभाए, परमहंस में जीवन, उन्होंने मैजिस्ट्रेट रहे और घर में 10 बच्चे थे, पहले पत्नी एक शादी किए थे, उसका डेथ हो गया, दूसरी पत्नी भी शादी किए, इतने सारे परिवार, बड़ा परिवार था, गवर्नमेंट नौकरी करते थे, फिर इतनी सब करके भी इन्होंने परमहंस के जीवन बिताया। फिर भी उन्होंने 100 पुस्तक लेकर हम सभी के लिए दिया, प्रभुपाद जी जितने पुस्तक लगे, इतना पुस्तक भी कौन लिखा था? भक्तिविनोद ठाकुर ने भी 100 पुस्तक लेकर गए। वो कहे बहुत पुस्तक अभी तक उनकी प्रिंटेड नहीं हुई है, इतने समय कहां से आता था, क्योंकि समय को दुरुपयोग नहीं करते थे, पूरे 24 घंटे को रूटीन बना के रखे थे, एक सेकंड भी उनका प्रजल्प के लिए नहीं था, कोई रूटीन में लिखा नहीं था कि प्रजल्प के लिए समय है, थोड़ा न्यूज पेपर पढ़ने के लिए है, और कोई मित्र आएगा तो उससे थोड़ा गाम्य कथा को चर्चा करने के लिए है, नहीं। तो हम इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हम भगवान प्राप्त कर सकते, इसलिए कहते कि स्थाने स्थित्वा श्रुतिगतां तनुवांक मनोभी। भक्ति का अर्थ है जिस स्थान पर रहते उसी स्थान में रहो, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बनकर रहो, गृहस्थ गृहस्थ आश्रम में रहे, वानप्रस्थी वानप्रस्थी में, सन्यासी सन्यास आश्रम में, स्थाने स्थित्वा श्रुतिगतां तनुवांक मनो, तनो शरीर वाणी और मन को केवल भगवान की सेवा में लगाना। जिस आश्रम में आप रहो उसी आश्रम में रहकर जैसे संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में अपने को अर्पित कर सकते हैं, आपके मन को भगवान के चरण में लगाने में सक्षम हो, शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाया, तनो बात और वाणी को भी सदा भगवान की चर्चा में लगाया, तो फिर आप किसी वर्ण आश्रम में रहकर भी भक्ति कर सकते, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कोई घर को भगवान के समझा, जो भी कोई आपने मैं और मेरा भावना से मुक्त है, वही गृहस्थ आश्रम रहकर ही सब कुछ भगवान को ही अर्पण करके ही, वासुदेवा अर्पण करके ही अपने भजन में रत रहता है, तो भी भगवान को प्राप्त करने में सक्षम है। और विशेष रूप में नारद मुनि को इस अध्याय में आदर्श गृहस्थ जीवन में कैसे रहकर भगवान को प्राप्त करना, उसी की प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछे थे। इसलिए प्रभुपाद ने हम कहते कि हमें ऐसा ही नहीं करना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी जानती देवव्रता देवन अर्थात देवताओं की पितरों को और किसको भूत प्रेतों को अन्य इनको सब पूजा करने का आदि सब क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो ध्यान रखना चाहते कि चाहे कि भगवान कहते कि जानती मध्याजिन अपिमान, यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवत धाम वापस जाएगा, यदि भक्त भगवान की भक्ति नहीं करता तो भगवत धाम नहीं जाए, चाहे किसी भी आश्रम में रहे, कोई सन्यासी आश्रम में रहकर भी यदि भगवान की भक्ति नहीं करेगा भगवत धाम जाएगा? सन्यास दंड ले लिया ऐसे भी जाएगा भगवत धाम? लोग को ऐसे सन्यासी वेश बनकर दंडा दिखाने से कोई भगवत धाम जाएगा? नहीं। भगवान के धाम जाने के लिए भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, काय मनो वाक्य में समर्पित होकर भगवान का प्रचार करना पड़ेगा, सन्यासी के काम प्रचार करना। यदि वो ठगता होगा तो भगवान को ठग नहीं सकता, भगवान सब जानते हैं अंतकरण में क्या सोचते हैं। त्रिदंड धारण किया किसके लिए? वही काय मनो वाक्य में भगवान की सेवा करने के लिए। सदा याद रखना, मैं सन्यास आश्रम किसी लिए दिया? शरीर से मेरा शरीर मन वाणी सब कुछ किसकी सेवा में अर्पित है? कृष्ण की सेवा में है। मैं एक जीवात्मा हूं और मैं भगवान नहीं हूं। सन्यास जैसे मायावादी लोग सोचते कि सन्यास लेने से क्या बन गया हो, भगवान नमन नारायण है। नहीं, वैष्णव सन्यासी सोचते कि मैं एक जीवात्मा हूं और शरीर मन और वाणी में मैं संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा के लिए जीवन को समर्पित किया हूं, ये जीवन काल उन्हीं की सेवा के लिए। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहकर भी व्यक्ति इसको इसी प्रकार चिंतन कर सकता है। सन्यासी और जोगी कौन है? भगवान ने छठा अध्याय पहला श्लोक में कहते हैं, अनाश्रित कर्म फल कार्यं कर्म करोति जह स जोगी च सन्यासी न निरग्नि न चाक्रिय। उसी को जोगी कहते हैं, उसी को सन्यासी कहते हैं जो कर्म फल में आशा नहीं रखा है। अनाश्रित कर्म फल, जिसको कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं, आशा नहीं है, कर्म फल को संपूर्ण रूप में वासुदेव अर्पण, वासुदेव के चरण में, कृष्ण के चरण में अर्पण कर चुका है। कर्म फल में जो आशा नहीं रखा, अनाश्रित कर्म फल कार्यं कर्म करोति जह, सभी प्रकार के कार्य और अपने वर्ण आश्रम के आधार पर जो कर्म करता है, लेकिन कर्म फल को संपूर्ण रूप में भगवान को अर्पण कर रखा है, वही जोगी है और वही सन्यासी है। उसी को जोगी और सन्यासी कहते हैं, जो गुरु के निर्देशन के आधार पर सेवा कर भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है और कर्म फल को संपूर्ण रूप में भगवान को अर्पण कर चुका, वही जोगी और सन्यासी है। इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हम समझाना चाहते कि कहीं यदि भगवान की भक्ति करता तो भगवत धाम जाएगा, अतः मनुष्य जीवन में उसे कल्याण करने होते हैं जिससे वह भगवत धाम लौट सके। किंतु भक्ति भौतिक परिस्थितियों पर आश्रित नहीं है, हेतु की अप्रतिहता, कोई साधक कोई साधक पक्ष में पिंडदान दिया और नहीं दिया, भक्ति इसके लिए अपेक्षा नहीं करता, साध नहीं दिया इसलिए भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। कोई लौकिक की दृष्टि से साधक पक्ष में पिंड आदि दे सकता है, वह कोई जाकर वहां कुरुक्षेत्र में सूर्य पराग में चंद्र ग्रहण में जाकर डुबकी लगाया, ठीक है, कुछ सुकृति बना, लेकिन भक्ति इसी के ऊपर निर्भर नहीं करता। भक्ति संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है, भक्ति कर्म और ज्ञान से मुक्त है। अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। कर्म और ज्ञान से, कर्मकांड आदि माध्यम से अन्य अन्य देवताओं को, पितरों को प्रसन्न करके कुछ इंद्रिय भोग की वस्तु प्राप्त करना, ये भक्ति में इसमें कुछ लेना देना नहीं है। और ज्ञान की अभ्यास करके ही कि मोक्ष की इच्छा रखना, साजुज्य मुक्ति की इच्छा रखना, इसमें भक्ति कुछ लेना देना, भक्ति संपूर्ण रूप में स्वतंत्र है। भक्ति कोई भी कर सकता है, कभी कभी हम सोचते हैं कि भक्ति सत्वगुण में आने से लोग कर सकता है, सत्वगुण से भक्ति कर सकता है, रजोगुणी व्यक्ति तमोगुणी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकते, सभी कभी कभी आप लोग लेक्चर में सुने होंगे। भक्ति के कौन कर सकता है जो सत्वगुण में है? केवल ब्राह्मण ही भक्ति कर सकता है, शूद्र वैश्य और कौन? शूद्र वैश्य और क्षत्रिय ये भक्ति नहीं कर सकते। भगवान ऐसा कहा, भक्ति कोई भी कर सकता है, स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र तेज जानती परानुगति मांग ही पाप थ व्यपाश्रित्य स्ते अपिशु पाप जनयो। शूद्र का अर्थ तमोगुण में रहने वाला, वैश्य का अर्थ तम रस रज मिश्रित गुण में रहने वाला, क्षत्रिय रजगुण में रहने वाला, स्त्री वैश्य शूद्र कोई भी भक्ति को आश्रय कर सकते हैं। तमोगुणी व्यक्ति भी भक्ति के प्रारंभ कर सकता है, रजगुणी व्यक्ति भी भक्ति प्रारंभ कर सकता है, व सतगुणी भी भक्ति करेगा, लेकिन तथ्य यही है कि जो सत्वगुण में आएगा तभी भक्ति में कंटिन्यूस है, इसको समान ठीक से स्थिर भाव से स्थिर भक्ति कर सकता है। स्थिते सत्वे प्रसिद्धति, रजोगुणी तो प्रारंभ से कर सकता है, भक्ति का प्रारंभ कर सकता है, लेकिन जब तक तो सत्वगुण की स्थिति को आएगा नहीं तो वो स्थिर भक्ति में स्थिर नहीं हो सकता, सबसे विचलित रहेगा मन है। इसलिए भक्ति प्रारंभ किसी गुण से किया जा सकता है, लेकिन आस्ते आस्ते गुरु के निर्देशन में फिर उसको सत्वगुण की स्थिति में आना से भक्ति स्थिर स्तर पर आता है। कोई भी आकर इसकर में जैन कर सकता है, मना थोड़ी है किसको, सब जैन कर सकते, लेकिन आने के बाद ऐसा प्रभुपाद जी ने फिर नियम रखा है, क्या? मंगल आरती में सुबह स्नान करना, मंगल आरती में आना, माला लेकर सोलह माला बैठकर जप करना भक्तों की संगति में, फिर भागवत कक्षा में बैठना, ये सारे क्यों कहा गया? ऐसे करने से आस्ते आस्ते सत्वगुण की स्थिति को प्राप्त कर लेगा, अर्थात त्रिगुणातीत सत्वगुण से ऊपर जाएगा भक्ति। इसलिए भक्ति करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। किसी भी वर्ण आश्रम में रहकर भक्ति करना ही जो उद्देश्य है उसी को प्रभुपाद जी कहते हैं। इसलिए जानना चाहिए कि सेव क्या है। सेव है कि भगवत धाम जाना, इसलिए भगवत धाम लौट सके। किंतु भक्ति भौतिक परिस्थितियों पर आश्रित नहीं है, अहेतु की अप्रति होता है। जो लोग सकाम कर्म में लगे हैं उनके लिए उपयुक्त काल तथा वस्तु अत्यंत अनुकूल है। तो इसलिए यदि कभी कभी हम देखते हैं लौकिक दुष्टचर्म कैसे करना पड़ता है, पुण्यदान आदि बा उसे पुण्य कर्म करना पड़ता है देखो, लेकिन हमें उसे में आसक्त नहीं रहना चाहिए। हमें भक्ति के रहस्य को समझना चाहिए। भक्ति में कहते कि देवर्षि भूतात्मानां पितॄणां न किंकरणायं ऋणीच राजन् सर्वात्मनाज शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिहृत कर्तुम्। हम संसार में कितने लोगों के चरण में ऋणी है, किसके चरण में ऋणी है? देवताओं के चरण में ऋणी है, हैं? क्योंकि देवता लोग ने, सूर्य ने हमको आलोक प्रदान करते, अभी तक सूर्य उदय हुए तो भी आलोक आया नहीं था, इसका पहले क्या था? अंधार ही था, हैं? और इंद्र ने बारिश करते तो हमको पानी, फिर बारिश होने से ही अनाज उगते हैं, हैं? खेती बनता है। और श्वास को श्वास कैसे ले रहे हैं? वायुदेव यदि बंद हो जाएंगे सब बंद कर देंगे अपने चल फिर उस, ये भी हमारा उपकार करते हैं। अग्नि के उत्ताप से क्या करते हैं? हम खाना बनाते हैं, और सभी देवता कुछ ना कुछ उपकार किए। देवताओं के चरण में हम ऋणी हैं, इसलिए उनकी पूजा करना वैदिक कर्मकांड में कहा गया। जिन देवताओं से तुम उपकार प्राप्त किए हो तो उनको थोड़ा तो पूजा करना चाहिए, उनको थोड़ा सा वंदना करने से क्या नुकसान है, ऐसा कहा गया। ऋषियों के चरण में ऋणी है क्योंकि आप भागवत पढ़ रहे हैं, इसको कौन लिख के दिया? व्यासदेव जी ने लिख के दिया। रामायण पढ़ रहे कौन लिख के दिया? वाल्मीकि लोग ऋषि देख के। कोई न्याय शास्त्र पढ़ रहा है, कोई जोग सीख रहा है योगशास्त्र, पतंजलि ने लिख के दिया योग शास्त्र। न्याय शास्त्र गौतम ने लिखा, कई सब प्रकार ज्ञान का विभाग। कर्नाड ने कर्मकांड सिखाया, ऐसे जैमिनी ने कर्मकांड सिखाया, कर्नाड मुनि ने वैशेषिक ज्ञान के बारे में हमको बताया। वेदांत व पुराण उपनिषद सारे व्यासदेव जी ने लिख कर दिए। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन सिखाया। तो ये ऋषि को से ज्ञान ले रहे तो उनके चरण में हम ऋणी हो रहे कि नहीं? तो उनकी ऋण चुकाने के लिए फिर उनका ही पूजा करो। देवर्षि भूतात्मा पितरों, पितरों के चरण में ऋणी है क्योंकि किसी घर में जन्म होते ही उस घर के जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक बन जाते हैं। वो कितना परिश्रम करके पितरों कमाया था, उसे बनाया था बिल्डिंग, वो अपने जिंदगी में कितना परिश्रम किया, तो उसी घर में खाली जन्म लिया, उसका बेटा बन गया तो सबका मालिक बन गया बस। तो ऐसे ही पितरों के चरण में भी हम ऋणी है। देवर्षि भूतात्मा ऋणान पितृणाम न किं करण आयन ऋणी च राजन। लेकिन कहते कि करवाधन ऋषि कहते महाराज निमी को कि हे राजा, हे निमी महाराज, लेकिन ये सारे ऋण को आप यदि एक एक करके चुकाना चाहोगे जीवन जिंदगी भर एक लाइफ में चुका पाओगे? इनके ऋण को नहीं चुका पाओगे। पितृ ऋण को चुकाने के लिए आपको भगीरथ की तरफ तपस्या करना पड़ेगा। गंगा को लाए वो तपस्या कितना कष्ट उठाए, पितरों को उद्धार करना। पुत्र का प्रकृत में ऋण कैसा चुकेगा यदि पितरों को भगवत धाम पहुंचाएगा? पुत्र शब्द का ही अर्थ है कि पुत्र शब्द का अर्थ ही नर्क, त्र का अर्थ जो त्राण करता, नर्क से जो उद्धार करता है पितरों को उसके उसको कहते पुत्र। प्रभुपाल जी कहते कि यदि पुत्र होकर कोई नर्क से पितरों को उद्धार नहीं कर पाया वो क्या है? वो मूत्र है, वो पुत्र नहीं है। इसलिए ये सारे ऋणी है हम, पितरों को भी हम पुत्र बन गए तो पिता माता को भी, पितरों को भगवत धाम पहुंचाने ये हमारा कर्तव्य, जन्मोत्तर संसार से मुक्त करना है। देवता और ऋण, लेकिन ये सारे ऋण कैसे चुकाएंगे हम एक जन्म में? इसलिए कहते कि देवर्षि भूतात्मा ऋणांग पितृणांग न किं करण आयं ऋणी च राजन। हे राजा, तुम किसी के चरण में ऋणी नहीं रहोगे, तुम्हारा कोई भी कर्तव्य संसार में नहीं रह जाएगा यदि तुम एक बात करोगे। क्या? गतो मुकुंद परिहृत कर्तुम। तुम्हारे एकमात्र कर्तव्य है कि यदि भगवान मुकुंद व गोविंद कृष्ण को प्रसन्न कर लोगे ये सारे कर्तव्य अपने आप हो जाएगा। हैं? प्रहलाद महाराज एकमात्र नृसिंह देव की भक्ति की है, भगवान की भक्ति की है, तो उसी से उनके पिताजी का उद्धार हुआ है। वो कहते थे कि मेरे पिताजी का थोड़ा, प्रहलाद महाराज गए कि नृसिंह देव कहते प्रहलाद कुछ मांगो मांगो, कुछ जो भी चाहिए कुछ मांग लो, मेरे जो भक्ति किया ऐसा ही निष्फल नहीं जाता है। तो कहते मुझे क्यों लोभ दिखा रहे हो, मैं राक्षस घर में जन्म हुआ हूं, मेरे मन में तो कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ऐसा ही उद्रेक हो सकता है, मुझे लोभ मत दिखाइए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी ने इतना सारा आपका द्वेष किया है, आपको बहुत सताया, मैंने मेरे को तो सताया और आपके प्रति भी द्वेष किया, आपकी निंदा किया, इसलिए उसकी अपराध क्षमा करके उसको भगवद्धाम आपके धाम में स्थान दीजिए। इसका इतने मेरे कृपा, मुझे कृपा कीजिए, मेरे पिताजी को भी उद्धार कीजिए, पुत्र के रूप में मेरा ही कर्तव्य बनता है कि उसको उद्धार करना है। तो नृसिंहदेव कहते कि प्रहलाद तुम जैसे पुत्र जिस घर में जन्म हुआ है इसके तहत त्रिसप्त अर्थात 21 पीढ़ी ऐसा ही मेरे धाम में जाते हैं, तुमको बोलने की आवश्यकता मांगने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात यदि कृष्ण भक्ति कोई करता है उसके पितर वैसे ही जाते, शुद्ध भक्त यदि बनेगा प्रहलाद महाराज की तरफ, रूपा जी से महान भक्त बने, कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने से सारे पितरों अपने आप जाएंगे कहां, भगवद्धाम जाएंगे। हाँ रूपा जी का तात्पर्य लेते अरे 21 पीढ़ी कौन याद रखा, नृसिंहदेव कहते कि 30 सप्ताह 21 पीढ़ी जाएंगे, तो 21 पीढ़ी कौन याद रखा पितर, हमारा पिताजी का पिताजी, इसका पिताजी कौन, और तो चार पीढ़ी भी हमको याद नहीं होता है, 21 पीढ़ी। आचार्य लोग कहते कि नहीं, इसके पिताजी की तरफ से, माताजी की तरफ से, और किसकी, इसकी पत्नी की तरफ से जो जो भक्त है उसके सभी उद्धार हो जाते हैं, सारे भगवत धाम चले जाते हैं। कि ध्रुव महाराज भक्ति के तो उनकी माताजी उद्धार हुई ना, ध्रुव महाराज भक्ति की है, जब वैकुंठ से विमान आया ध्रुव महाराज सोचे कि मेरी माँ का क्या हुआ, तो विष्णु दत्त ने हंसे कहे देखो आपको लेने के पहले तुम्हारा माँ भी जा रही दूसरा विमान में भगवत धाम। इसलिए भक्त की पिताजी की तरफ से पितृपुरुष भी उद्धार हो जाते, मातृपुरुष माँ की साथ में जो संपर्कित वो भी उद्धार हो जाते हैं, इसकी पत्नी की तरफ से भी सारे उद्धार हो जाते, क्योंकि पत्नी क्या वो इसके ऊपर निर्भर रहती है, धर्म पत्नी है, धर्म विभाग उसकी भी रहती है, सारे उद्धार हो जाते। इसलिए कहते कि भक्त बनो, भगवान की भक्ति करने से तुम किसी के चरण में ऋणी नहीं रह जाओगे। हे राजन, हे निमी महाराज, आप किसी के चरण में ऋणी नहीं रहोगे, एकमात्र यदि गोविंद की भक्ति कर पाओगे, शुद्ध भक्ति, आपके सारे कर्तव्य मिट जाएंगे, ये सारे देवता है सब उन्हीं की नौकर है, और उनकी प्रसन्न करने प्रसन्नता से ये सब भी प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे, यथा करो मूल निषेचने न तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहारेण यथा इंद्रियाणाम तथैव सर्वा हणच्युते ज्ञान। उदाहरण दूसरा प्रस्तुत करते कि जैसे वृक्ष को हरा भरा देखना चाहते फल फूल में तो पानी कहां देना पड़ेगा, जड़ में, तर और मूल है इसे चने में, वृक्ष की जड़ में पानी देने से वृक्ष अपने आप बड़े होकर हरा भरा फूल फल में हरा भरा हो जाता है। यदि हम अच्छे बॉडी को सुस्थ सबल शरीर प्राप्त करना चाहते हैं, खाना कहां पहुंचाना पड़ता है, पेट में, लगे नहीं थोड़ा नाक में डालेगा, थोड़ा मुख में, आंख में, देवताओं पूजा करना ऐसा ही है तो खाना को पेट में पहुंचाना पड़ता है, तो पेट से फिर वो पाकस्थल में डाइजेशन होकर शक्ति से फिर आपने सारे अन्य अंगों को शक्ति मिल जाता है। यथा तरोमूल निषेचन तृप्यंती तत्स्कंध भुजोपशाखा, इसका वृक्ष का सारे टहनिया पत्ते सभी को खाना मिल जाता है जड़ में पानी देने से, पेट में खाना पहुंचाने से सारा शरीर का पोषण होता है, सुस्थ सबल बन जाता है ये। और इसी प्रकार सारे, यदि हम समस्त इंद्रिय के स्वामी भगवान विष्णु की आश्रय करेंगे, उनकी पूजन करेंगे, तब फिर ये समस्त देवताएं पितरों जितनी भी हमारे ऋणी ऋण थे जिनको प्रसन्न, ये सारे प्रसन्न एक साथ हो जाते हैं। यथातर और मूल निषेचन तृप्यंती स्कंद भुज पशाखा प्राण प्रहारण यथा इंद्रियाणाम तथैव सर्वाहण, इसी प्रकार है एक उदाहरण दी गई, इसी प्रकार समस्त ऋण से समस्त कर्तव्य से प्राणी मुक्त हो जाता है केवल अच्युत गोविंद कृष्ण की भक्ति करने से है। अच्युत ये कभी च्युत नहीं होने वाले हैं, अपने भक्तों को रक्षा करने में ये कभी भी चुकते नहीं है, जो उनके शरण में जाता है उसके सारे कर्तव्य जो कुछ भी जहां ऋण सब कुछ चुका देते, कौन चुका देता है, भगवान, समस्त ऋण से समस्त कर्तव्य से एक साथ मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते कि ये पहले श्लोक में से श्राद्ध आदि इतना कर्मकांड बताया गया, अवश्य भक्तों को समाज में रहते हैं तो कर्मकांड माने लौकिक की दृष्टि से इसको करते रहना चाहिए, लेकिन असली उद्देश्य को समझना चाहिए। असली उद्देश्य क्या? भगवान की भक्ति करना, जीवन के लक्ष्य है, श्रेय है भक्ति करना। हमारे जीवन की जो श्रेय व लक्ष्य है वो ही भगवान गोविंद को, राधिका रमण को प्रसन्न करना है। और फिर लौकिक दृष्टि से थोड़ा बहुत कुछ ये सब नहीं तो कई प्रकार की समस्या चलेगा, फिर झगड़ा संसार में आप हुआ सो कई फनाटिक ये सो दुनिया कई प्रकार की क्रिटिसाइज करेंगे। जैसे हमारा कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में जो निर्माण हो रहा था, प्रतिष्ठा हुआ मंदिर, तो बहुत बड़ा यज्ञ भी हुआ, सब कर्म कांड बहुत बड़ा स्वाहा, बड़ा बड़ा ब्रजवासी पंडित सब आए और स्वाहा स्वाहा करते थे। प्रभुपाद ने कहे कि अपने शिष्य को कहे कि ये देखवा है इसको, तो बोला इनको लोगों को चुप करने के लिए मुख है। हाँ हाँ बड़ा यज्ञ हुआ, बड़ा हुआ है। हमारा जो असली गट्टी इंस्टॉलेशन कैसे होते हैं? कीर्तन के माध्यम से। इसलिए वो कहे कि आप सब नाचो गाओ, अच्छे से कीर्तन करो। जो हरि संकीर्तन होगा, नाम संकीर्तन के माध्यम से ही भगवान आते हैं, आकर फिर वहां शुद्ध भक्त के आह्वान में आकर फिर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आज कोई कलयुग में योग्य ब्राह्मण नहीं है, मंत्र उच्चारण करके किसको लाएगा? यदि योग्य ब्राह्मण है तो उसको पहले परीक्षा देना पड़ेगा। कहां यज्ञ जो प्रारंभ करता है उसमें माचिस नहीं लगाना, या लाइटर नहीं। कैसे यज्ञ कैसे होता? प्राचीन काल में जाएंगे मंत्र आह्वान करो तो अग्निदेव को है, मंत्र उच्चारण करके अग्नि को आह्वान करो, बस अग्नि अपने आप चलेंगे यज्ञ में। मंत्र के माध्यम से वो अग्नि जवा नहीं पा रहा तो आगे क्या करेगा? तो इसलिए काल में वो वहां क्लास दे रहा था, तात्पर्य में लिख रहे हैं कि प्रभुपाद ने इस कलयुग में एक भी ब्राह्मण नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं एक भी ब्राह्मण नहीं है कलयुग में, एक भी योग्य ब्राह्मण नहीं है जो कि वैदिक मंत्र के सही सही उच्चारण कर सके। तो इसलिए कलयुग में कोई भी यज्ञ कर्मकांड यज्ञ कुछ भी नहीं है। इस कलयुग में केवल हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्ते इव नास्ते इव नास्ते इव गतिरण्यता इति षोडशकं नाम्ना कलो कलमसनाशनम नातो परतरो देवीं सर्ववेदेषु दृश्यते। चारों वेदों में पुराण में उपनिषद और कोई भी उपाय नहीं देख रहा मुझे, शंकर जी कह रहे किनको? पार्वती को। इस कलयुग में केवल 16 सप्तर 32 अक्षर के जो ये मंत्र बना हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी महामंत्र के माध्यम से ही केवल लोग उद्धार होंगे। और कोई उपाय नहीं, ना तो परोतरो देवी, हे देवी हे पार्वती, और कोई उपाय नहीं कलयुग में, एकमात्र उपाय। इसलिए गृह थाको बने थाको सदा हरि बोलिए ठाको। भक्ति मोहन ठाकुर कहते कि ठीक है, आप वैरागी हो, सन्यासी बन गए, बा ब्रह्मचारी आश्रम में रहते, वानप्रस्थी रहते, बा घर में रह रहे हो, तुम्हारा एक ही कर्तव्य क्या है? सदा हरि बोले ठाको, सदा हरि के स्मरण करो। अपने कर्तव्य के निर्वहन के साथ साथ भगवान हरि के सदा स्मरण करो, सदा हरे कृष्ण मंत्र की उच्चारण करते रहो जब भी टाइम मिला। स्थान काल पात्र किसी भी इसके निषेध नहीं है। महाप्रभु को माने ये महाप्रभु एक बार थोड़ा सा इनको एक नंबर जाने था, तो एक नंबर या दो नंबर, तो उन्होंने थोड़ा जीव के सही बात नहीं कर रहे थे, जीव काट के रखते, छोटा बालक था गोपाल, बोला ये क्या महाप्रभु ऐसा क्यों जीव ऐसा ना, अभी मैं क्या है दो नंबर जा रहा हूं तो मुझे बातचीत नहीं, अभी बातचीत। बोला अच्छा, जब मृत्यु आएगा तो मृत्यु तो किसी समय आ सकता ना, तो बोले कोई गया वो स्वर्ग स्वर्ग जैसे वो क्या बरहा प्राण होते, वो इसको डायरिया हो रहा था, जंगल में चला गया लेटिन करने के लिए, स्वर आ गया उसको, जंगली स्वर है, भयभीत हो गया, तो उसको वही मतलब उसका मृत्यु हो गया। तो मृत्यु तो कभी भी हो सकता ना, तो फिर भगवान के नाम नहीं लेंगे तो कैसे उद्धार होंगे? तो महाप्रभु कहे कि भाई तुम भी मेरा एक गुरु बना, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? गोपाल गुरु है, छोटा बच्चा 5 साल हुआ वो, उसका नाम हो गया गोपाल गुरु है। वो महाप्रभु को भी सिखाया है कि नहीं, हरिनाम सब समय, हरिनाम उच्चारण करने में कभी मना नहीं, किसी भी स्थान काल पात्र किसी भी स्थिति पर, कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए भगवान के नाम इस कलयुग के लिए एकमात्र यज्ञ है। ये संकीर्तन यज्ञ है। कृष्ण वर्ण तिशा कृष्णम सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर जयंती सुनिधसा। सबसे बुद्धिमान मनुष्य इस कलयुग में कृष्ण वर्ण जो सदा कृष्ण के नाम को उच्चारण करते हैं, जो गौरांग महाप्रभु अकृष्ण लेकिन उन वर्ण कृष्ण जैसा नहीं है लेकिन सदा कृष्ण नाम उच्चारण करते, तब तक कांचन गौरांगी है राधारानी के वर्ण कांति को लेकर अवतीर्ण हुए हैं, अकेले नहीं आए, सांग पांग अस्त्र पार्षद सांग गौरांग गौरांग नित्यानंद पांग उपांग है गदाधर और शिवास आदि और पार्षद सारे गौरव भक्तों को लेकर, और उनकी सुंदरता भी इनकी अस्त्र है, साथ साथ ये नारायण अस्त्र हरे कृष्ण महामंत्र के अस्त्र को लेकर सारा दुनिया में जो इस संकीर्तन यज्ञ को प्रवर्तन किया, जो इस कलयुग में उसी महा हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र के यज्ञ में भाग लेते हैं सुमेधसा, ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं। सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति वही है जो कलयुग में किसी भी वर्ण आश्रम में रहकर सदा हरिनाम की उच्चारण करते रहा, अपने कर्तव्य निभाते हुए भी हरिनाम उच्चारण करते रहता है तो ही बुद्धिमान है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण। महाराज जी, जैसे यहाँ पे भागवत में कहा गया कि श्राद्ध दिवस भगवान को भोग अर्पण करके वो खिलाए जाएं, तो ऐसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जब श्राद्ध में प्रसाद खाते हैं तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाता है, तो क्या सही बात है?
श्राद्ध प्रसाद ऐसे खाओ जब भगवान को अर्पण करके कहे तो महाप्रसाद है, अब महाप्रसाद खा रहे हैं, जब भगवान को अर्पण किया गया है तो फिर वो महाप्रसाद है, भगवान को अर्पण करके फिर खाना। हाँ, उसके कहने का मतलब है कि जो कोई मरा हुआ व्यक्ति का साथ में खाएंगे तो हमारा भक्ति नष्ट होगा, कहते ना उससे कर्म लेना पड़ता है, जिसका कारण है ना कर्म है उसे कर्म लेना पड़ता है, इसलिए। लेकिन यदि भक्त है तो ठीक है, भक्तों की कोई कर्म नहीं होता है, उनके कर्म सब कौन ले लिया, भगवान ले चुके हैं। जैसे इस कर्म में कोई भक्त की डेथ होता तो उसकी वो उसके लिए फीस्ट बनता है जो मंदिर में उसको खाने के लिए है? नहीं, कोई आचार्य जो तिरुभाव तिथि है इस तरह के डिवोटी का कोई डेथ हो गया तो उसका के लिए जो प्रसाद बनता है वो भगवान को अर्पण करके खाते हैं है? प्रसाद खाना। कोई बाहर के कर्मी जो भक्ति नहीं करता है तो वो उसके घर में खाने से हम कर्म भोगना पड़ेगा, क्योंकि भोग नहीं लगाता है, उसके पास भक्ति नहीं है, इसलिए जो भक्ति नहीं किया है और भक्तों की विषयी अन्न खाइले मलिन है मन मलिन मन हईले न हे कृष्ण र स्मरण। गौरांग महाप्रभु ने कहा जो संसार में फंसे हुए विषयी व्यक्ति है जो भक्ति नहीं करते कृष्ण की, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे ही संसारी व्यक्ति का अन्न खाने से हमारा मति कलुषित हो जाता है, तो इसलिए उनसे नहीं खाने लगे भक्ति की, जो भक्तों के बीच में रहकर भक्तों की जो तिरुभाव होता है तो वो उनके प्रसाद खाने से कोई कलुषता नहीं होता। और कोई प्रश्न है? हाँ,
जो पूर्वजों के थ्रू जो है कई बार लोन भी मिल जाता है, मतलब आजकल ऋण मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, कई बार जो है हमारे जो पूर्वज है हमारे लिए काफी लोन भी छोड़ जाते हैं जो बच्चों को उतारने पड़ते हैं, तो इसको किस तरह से देखा जाए?
इसलिए चार्य पंडित कहा ऋणों कृत्वा पिता शत्रु, हमारा कई शत्रु है, जो पिताजी कर्जा छोड़ जाता है लड़का के लिए वो उसका क्या है शत्रु है। ऋणों कृत्वा पिता शत्रु माताश्च व्यभिचारिणी, माता यदि वेश्यावती करती हो तो फिर वो भी अपने संतानों के लिए शत्रु है, पिताजी यदि कर्जा छोड़ के जाता है वो शत्रु है। रूपवती भार्या शत्रु है, पत्नी यदि बहुत सुंदरी है तो फिर उसके वो भी शत्रु बन जाती, कैसे अहल्या जैसे बहुत सुंदरी थी है तो देवता लोग ने आकर्षित होकर आते थे, गौतम मुनि बड़ा चुप समस्या होता था, तो जा पत्थर बन जाते हुए पत्थर में मेरा भजन तो तेरे को चिंतन करके मैं भजन करूंगा है, पत्नी ज्यादा सुंदरी होती तो फिर दूसरे पुरुषों के आकर्षण वहां पर रहता है, हाँ? तो आपको फिर बहुत टेंशन में रहना पड़ता है, हाँ? रूपवती भारिजा शत्रु, पुत्र यदि अपंडित, पुत्र यदि मूर्ख होता है, लड़का यदि क्या होता, मूर्ख होता है, मूर्ख पुत्र शत्रु, ये चार शत्रु हैं, हाँ? तो इसलिए पिता यदि ऐसे ऋण कर्जा छोड़ के गया तो नारद मुनि ने सॉरी चाणक्य पंडित कहते कि वो भी शत्रु बनता है तो पुत्र के लिए, लेकिन फिर भी शत्रु होने पर भी पुत्र जो योग्य पुत्र कहते चलो शरीर तो मुझे दिया है, हैं? तो उसका भी उद्धार करूंगा तो ठीक है, पति पतित समझ कर उसको उद्धार करने के लिए पति तपावन बनता है वो, है? पुत्र भक्त बन जाता फिर आपने पति तपावन सोचता है, ठीक है।
थैंक यू महाराज जी। एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन और था कि जैसे हमने देखा है श्राद्ध जब हम करते हैं, जैसे जो सनातन धर्म मंदिर में जाते हैं जब हम, तो घर से जो है भोजन लेके जाते हैं तो वो कुछ एक मिनट में कुछ मंत्र सा पढ़ते हैं, बस थाली के आसपास कुछ जल थोड़ा सा डालते हैं और कहते हैं कि ठीक है छोड़ जाओ इसको यहाँ पे, फिर हम देख लेंगे बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जो भी भोजन लेके जाते हैं हम,
भोजन माने क्या लेके जाते हैं,
भोजन में महाराज जी जो भी जैसे जो घर से बना के लेके जाते हैं
पूरी कच्चा से जैसे
नहीं, नहीं, नहीं प्रॉपर प्रॉपर जो है कुक्ड फूड जो है बना हुआ भोजन जो है
भगवान को अर्पण किए कि नहीं।
हाँ, तो यही मेरा प्रश्न था कि जैसे अगर हम घर से भगवान को अर्पण करके भगवान को जो है भोग लगा के लेके जाएं और फिर वहां जाके फिर वो उसी थाली को कुछ और मंत्र भी पढ़ के, हो सकता है वो भी भगवान को जो है भोग ही लगा रहे हो, अब हमें पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं,
तो इसलिए आप मंदिर भी क्यों लेके जाते हैं, यहाँ भोग लगाए फिर उनकी वहां क्यों लेके जाते हैं।
नहीं नहीं महाराज जी एक्चुअल में घर में जैसे चलता है अभी मैं वैसे बता रहा हूँ आपको,
जैसे घर में चलता है ठीक है, यदि वहां भी भगवान को अर्पण करता हो तो जैसे आपको भोग लेके जाना, हाँ। यदि और वो लोग डायरेक्ट खाते होंगे साधुओं खिलाते हैं तो ठीक है प्रसाद लेके देना,
नहीं वो डायरेक्ट नहीं खाते, वो कुछ भोग लगाने की कोशिश करते मतलब भोग लगाते हैं,
भोग लगाते तो फिर आपको भोग लेके जाना चाहिए,
पर पता नहीं है प्रभु जी महाराज जी वो लगाते भी है कि नहीं लगाते, जस्ट ऐसे ही करते हैं तो इसलिए अपने तरह से करते हैं।
हम कैसे बताएंगे भोग लगा रहे के लिए, आप जाते हो आप देखते हैं आपको पता है, ठीक है।
थैंक यू महाराज जी।
ओके और कोई प्रश्न है। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय।